हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्यांश ने अपने दिल और दिमाग को अच्छे से समझा लिया था कि वो अपने पहले प्यार के साथ हुए अन्याय को भूलेगा नहीं, फिर चाहे वो दीवा से प्यार ही क्यों ना करे। आर्यांश अभी भी दीवा से बदला लेने का सही मौका तलाश कर रहा था, एक ऐसा मौका जहां दीवा को उसकी जरूरत हो और वो उसे सबके सामने बेइज्जत और लाचार छोड़ दे, जैसे उसके प्यार को छोड़ा गया था। आर्यांश ऑफिस में था तभी उसके पास समीक्षा का मैसेज आया। आज शाम वो एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज करने वाली थी। समीक्षा ने अपने मैसेज में साफ लिखा था कि आर्यांश वहां दीवा को लेकर पहुंचे, लेकिन शाम के वक्त आर्यांश अकेला अपने घर गया था। डिनर पार्टी में वर्तिका ने श्रेष्ठ को भी इन्वाइट किया था। कपूर मेंशन में काफी चहल पहल थी। डाइनिंग टेबल पर सब पहले ही आ चुके थे, बस आर्यांश थोड़ा देरी से पहुंचा था। तुम्हें कम से कम इस बारे में पहले हमें बता तो देना चाहिए था ना बेटा, वो तो अच्छा हुआ जो आर्यांश ने सभी वीडियोज इंटरनेट से हटवा दिए थे, वरना तुम्हारे प्रपोजल ने तो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, मनीष ने श्रेष्ठ से कहा। आर्यांश का दोस्त होने की हैसियत से श्रेष्ठ पहले भी वहां आ चुका था, पर आज वो वर्तिका के पार्टनर के तौर पर वहां बैठा था। पहले जब भी श्रेष्ठ वहां आता था तब काफी हंसी मजाक करता था, पर आज वो नजरें झुकाकर चुपचाप बैठा हुआ था। अब क्या तुम ऐसे ही शर्माते रहोगे? अब तक तो तुम्हारी फैमिली को भी पता चल गया होगा, तुम उनका सामना भी करने वाले हो, ऊपर से तुमने अपनी पहली सगाई भी नहीं तोड़ी है, समीक्षा ने श्रेष्ठ को घूरते हुए कहा। बस भी कीजिए मॉम डैड, जब से श्रेष्ठ यहां आया है आप दोनों उसे परेशान कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से इसने अपनी दिल की बात बोली है, वर्तिका ने श्रेष्ठ का हाथ पकड़कर कहा। उनके इस फैमिली ड्रामे से प्रियंक और सौरभ दोनों ही बोर हो रहे थे। वे आर्यांश के आने का इंतजार कर रहे थे। आर्यांश जब अंदर पहुंचा तो उसे आखिर में वर्तिका की बात सुनाई दी। आर्यांश उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो मेरे फ्रेंड को यहां पहले से ही तंग करना शुरू कर दिया गया है, लगे रहिए, ये इसी लायक है। आर्यांश को वहां देखकर प्रियंक ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब फाइनली उसे इस फैमिली ड्रामे से मुक्ति मिलने वाली थी। आर्यांश को अकेला देखकर प्रियंक को सिचुएशन समझते देर नहीं लगी थी। उसने खास करके समीक्षा से रिक्वेस्ट की थी कि इस डिनर में दीवा को भी इन्वाइट किया जाए। आर्यांश उसे नहीं लेकर आया था, इसका मतलब अभी भी वो अपनी और दीवा की शादी को लेकर सीरियस नहीं था। वहीं आर्यांश को अकेला देखकर समीक्षा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोली, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम दीवा को डिनर में लेकर आने वाले हो? क्या वो बाहर गाड़ी में है या तुम उसे लेकर ही नहीं आए? वो बहुत बिजी है मॉम, मुझे पूछने तक का मौका नहीं मिला, फिर कभी अरेंज कर लेंगे, आर्यांश ने बहाना बनाया और एक कुर्सी पर बैठ गया। दीवा के ना आने की खबर सुनकर सौरभ ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अरे नहीं, मुझे लगा था आज डॉक्टर गोयनका से मिलना होगा तो उन्हें फिर से थैंक्स कहूंगा, आखिर उन्हीं की वजह से मेरी इतनी जल्दी रिकवरी हो पा रही है, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया आर्यांश। सौरभ बजाज का चेहरा देखते ही आर्यांश के लिए अपनी नफरत काबू में कर पाना मुश्किल हो जाता था। वो जबरदस्ती अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बनाए हुए था। अंकल, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बेहतर होगा कि आप अपने दिल को काबू में रखें, आर्यांश ने तंज भरे लहजे में कहा। ओ, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा है, वर्तिका आर्यांश को चिढ़ाते हुए बोली। उसने समीक्षा की तरफ रुख किया और कहा, मॉम, मैंने सोचा है कि क्यों ना आप लोग हम दोनों की शादी का इवेंट आसपास ही रखें, वैसे भी आर्यांश काफी टाइम बाद किसी को लेकर इतना सीरियस हुआ है, हमें देर नहीं करनी चाहिए इससे पहले कि इसका मन बदले। बात तो तुम्हारी ठीक है, समीक्षा ने भी तुरंत उसकी बात पर सहमति जता दी थी। फिर उसने आर्यांश की तरफ देखा, मैं फिलहाल अपने और दीवा के रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि दादाजी की बर्थडे पार्टी आ रही है, पहले उनसे कियाना के सिलसिले में बात करनी होगी, उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि वो मेरी और कियाना की शादी करवा दें, आर्यांश ने सफाई देते हुए कहा। उन्हें सीधे सीधे मना करते हुए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही आर्यांश के दादाजी की बर्थडे पार्टी का जिक्र हुआ, प्रियंक जल्दी से बोला, फिर तो उससे बेहतर मौका कुछ और हो ही नहीं सकता आर्यांश, क्यों ना तुम अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में दीवा को साथ लेकर जाओ और उसे दादाजी से भी मिलवा दो, जब दादाजी को पता चलेगा कि तुम दीवा जैसी बेहतरीन लड़की से प्यार करते हो तो वो कियाना से तुम्हारे इनकार की वजह समझेंगे, दूसरा दीवा और तुम्हारे रिश्ते को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि प्रियंक सही कह रहा है, पूरी फैमिली पापा जी की बर्थडे पार्टी में जा रही है तो दीवा को भी ले जाना बनता है, आखिर वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है, समीक्षा ने प्रियंक की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। वैसे भी वो प्रियंक और सौरभ दोनों से ही बहुत प्यार करती थी, उनकी हर बात उसे सही ही लगती थी। कोई और आर्यांश के इनकार की वजह समझ पाई या नहीं, लेकिन प्रियंक और श्रेष्ठ दोनों ही अच्छे से समझ रहे थे, दोनों ही जानते थे कि आर्यांश दीवा के करीब किस मकसद से आया है। समीक्षा के आगे मनीष भी कुछ नहीं बोल पाते थे, ऐसे में श्रेष्ठ ने आर्यांश का साथ देते हुए कहा, आई थिंक आर्यांश सही कह रहा है, अभी जल्दबाजी होगी। दोनों फैमिलीज भी आपस में नहीं मिली हैं, और क्या पता आर्यांश के इनकार के बाद दादाजी कैसे रिएक्ट करें। फिलहाल इवेंट को खराब नहीं करते हैं। आर्यांश के मना करने के बाद उनका मूड वैसे भी अपसेट हो जाएगा। ऐसे में कहीं वो दीवा को अपने खानदान की बहू एक्सेप्ट करने से मना ना कर दे। हाँ, मुझे भी यही डर है, वो बहुत गुस्से वाले हैं, आर्यांश जल्दी से बोला। उसने श्रेष्ठ की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उसे थैंक्स कहा। ऐसे में मनीष को भी बोलने का मौका मिल गया था। उसने समीक्षा से कहा, जब आर्यांश कह रहा है तो हमें उनके रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं। आर्यांश की बात सुनकर समीक्षा ने उसे फोर्स नहीं किया। प्रियंक ने जिस मकसद से ये डिनर रखने को कहा था वो पूरा हो गया था। अगर दीवा प्रियंक को सच बता देती कि आर्यांश ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया है, तो उसे ये डिनर और फैमिली गैदरिंग का दिखावा नहीं करना पड़ता, वो पहले ही आर्यांश के इरादे जान जाता। प्रियंक के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोला, तुमने अभी भी दीवा को एक्सेप्ट नहीं किया है और उससे बदला लेना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में आज भी उसका प्यार जिंदा है। अगर इस बर्थडे पार्टी में तुमने बिना किसी ड्रामे के सब कुछ अच्छे से हैंडल किया तो आर्यांश, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। शायद उसके बाद दीवा जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। उन सब ने साथ में खाना खाया, बातें करते हुए पुरानी फैमिली वीडियो देखी और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कल आर्यांश के दादाजी मिस्टर पृथ्वी कपूर के 75th जन्मदिन की न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। समीक्षा मनीष और सौरभ के साथ पहले ही न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी। वर्तिका की शूटिंग का शेड्यूल टाइट होने की वजह से वो नहीं जा पा रही थी, लेकिन उसकी तरफ से श्रेष्ठ एक बड़े से गिफ्ट के साथ आर्यांश और कियाना के साथ जा रहा था। इस वक्त वे तीनों आर्यांश के प्राइवेट जेट के अंदर थे। कियाना और आर्यांश प्राइवेट चेंबर के अंदर थे। कियाना को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यांश उसके साथ उसी के दादाजी की बर्थडे पार्टी में जा रहा था। उसके साथ जाने का मतलब साफ था, वो उनके रिश्ते को एक चांस देना चाहता था। कियाना ने अपना हाथ आर्यांश के सीने पर रखा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे कहने पर एक बार मैंने अपने आदमी को रोक लिया है, डोंट वरी, इसके बाद उस लड़की से हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छूट जाएगा।
कियाना आर्यांश से दीवा के बारे में बात कर रही थी। अगर आर्यांश ने उसे रोका नहीं होता तो अब तक वो दीवा को चोट पहुंचा चुकी होती। आर्यांश ने फिलहाल उसे यही बहाना देकर रोका था कि वो इस मामले में उसके दादाजी की बर्थडे पार्टी तक रुक जाए। आर्यांश ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया था। इस एक हफ्ते में उसका और दीवा का रिश्ता काफी हद तक बदल गया था। पहले जहां आर्यांश शाम होने का इंतजार करता था जब वो दीवा का चेहरा देख सके, वहीं पिछले एक हफ्ते में वो उससे ठीक से मिलने भी नहीं गया था। आखिरी बार उनकी मुलाकात दीवा के घर पर रात के समय हुई थी। तब भी दीवा ने उसके दादाजी की बर्थडे पार्टी का जिक्र किया तो आर्यांश ने उसे टाल दिया था। दीवा को नींद में छोड़कर वो अपने घर लौट आया था। दीवा के बिना रहना उसके लिए मुश्किल था, पर साथ ही वो इसी बहाने मन ही मन खुद को तैयार कर रहा था कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता है। आर्यांश का दिल ही जानता था कि दीवा के बिना रह पाना उसके लिए कितना मुश्किल था। आज भी वो उसके सामने आ जाती तो वो दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता। आर्यांश चुपचाप कियाना की बातें सुन रहा था, तो वहीं इस वक्त दीवा प्रियंक के साथ एरोप्लेन में बिजनेस क्लास सीट पर बैठी हुई थी। आर्यांश के अंदर आए बदलावों को वो अच्छे से महसूस कर रही थी। आजकल तो वो ठीक से उसके कॉल और मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा था, वो जरूरी कामों का बहाना बनाकर उसे टाल देता था। दीवा के दिल में ये डर हावी होने लगा था कि आर्यांश उसे छोड़ देगा। अगर प्रियंक ने जबरदस्ती नहीं की होती तो दीवा इस बर्थडे पार्टी में बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। दीवा का चेहरा उतरा हुआ था। प्रियंक ने उसे खोया हुआ देखा तो उसने दीवा के हाथ को सहलाते हुए कहा, तुम्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए दीवा, इतने ही दिनों में तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, कितनी कमजोर लग रही हो। मैं ठीक हूँ, बस हॉस्पिटल के काम के चलते खुद को टाइम नहीं दे पाई, अभी भी मैं कितनी मुश्किल से अपने लिए टाइम निकाल पाई हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे। ये बर्थडे पार्टी होने के बाद मुझे वापस मुंबई आना है, दीवा ने जवाब दिया। बस कल तक की ही बात है, आई होप कि कल के बाद तुम अपनी लाइफ में क्लियर हो जाओ डॉक्टर गोयनका, प्रियंक बोला। क्लैरिटी तो दीवा को भी अपनी लाइफ में चाहिए थी। आर्यांश कभी खुलकर उसके सामने अपने दिल के जज्बात रखता ही नहीं था। हाँ, उसके हाव भाव से लगता था कि वो दीवा को प्यार करता है, लेकिन जब भी बात हमेशा साथ रहने और शादी की आती तो आर्यांश का लहजा काफ़ी ठंडा हो जाता था। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद दीवा और प्रियंक न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। बर्थडे पार्टी से पहले वे होटल में रुके हुए थे। दीवा थोड़ी देर सोना चाहती थी ताकि उसके दिमाग में चल रहे उथल पुथल भरे ख्यालों से उसे मुक्ति मिल सके। वैसे भी पिछले दिनों अस्पताल में इतना काम था कि उसे ठीक से सोने तक का टाइम नहीं मिला था। वहीं आर्यांश जब कियाना के साथ अपने दादाजी के विला पहुंचा तो वे उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। उसके दादा मिस्टर पृथ्वी कपूर और दादी मिसेस सुनिधि कपूर काफ़ी समय बाद आर्यांश को देख रहे थे। ऊपर से साथ में कियाना भी थी तो उन दोनों को यही लगा कि वे दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। चलो आखिर तुमने समझदारी दिखाई और तुम्हें समझ आ गया कि बड़ों के फैसले ऐसे ही नहीं होते, पृथ्वी कपूर ने आर्यांश के गाल को थपथपाते हुए कहा। देखा जाए तो पृथ्वी और आर्यांश में कोई अंतर नहीं था। उन दोनों का बर्ताव एक जैसा ही ठंडा था और दोनों ही जिद्दी थे। आर्यांश की कियाना में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये जानने के बावजूद वे आर्यांश और कियाना की शादी की जिद पर अड़े हुए थे। वहीं आर्यांश भी अपनी धुन का पक्का था। अगर उसे कियाना से शादी नहीं करनी थी तो कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। पृथ्वी की बात सुनकर कियाना के गाल लाल होने लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सुनिधि ने कहा, तुम दोनों एक लंबे सफर से आए हो, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। कल तुम्हारे दादाजी ने अपने बर्थडे के साथ एक सरप्राइज प्लान किया है। आर्यांश और कियाना दोनों ही इतने बेवकूफ नहीं थे जो उनके इस सरप्राइज का मतलब ना समझें। कियाना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई थी तो आर्यांश भी शांत था, मानो उसे इस फैसले से कोई एतराज ना हो। वो जानता था कि कल उसे क्या करना था। आर्यांश ने उनकी बात पर हामी भरी और अपने कमरे में चला गया। कियाना के लिए भी गेस्ट रूम तैयार था। सुनिधि ने उसे हाउस हेल्पर के साथ वहां भेज दिया। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन ये लड़का मान ही जाएगा। तुमने सगाई की सारी तैयारी तो कर रखी है ना? पृथ्वी ने सुनिधि की तरफ देखकर पूछा, जिस पर सुनिधि ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कल की बर्थडे पार्टी उन सबकी जिंदगी में एक नया धमाका लाने वाली थी, खासकर कियाना की जिंदगी में। वो अपने कमरे में आकर खुशियां मना रही थी, इस बात से अनजान कि आर्यांश ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पहले ही प्लानिंग कर रखी है।